हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वही होटल, रूम नंबर 516। आदित्य और सुनैना एक साथ उस होटल के अंदर आए और आदित्य ने दरवाजा अंदर से बंद किया। फिर वो उस होटल रूम में चारों तरफ नजर घुमाकर वहां देखने लगा। उस होटल रूम में काफी कम लाइट्स थीं और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ नाइट लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से वहां ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा और पूरा कमरा एकदम डार्क और अंधेरा सा लग रहा था। सुनैना ने भी ये चीज नोटिस की तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, आदि, ये कहां फंस गए हैं हम? हमें यहां नहीं आना चाहिए था। पता नहीं क्यों तुमने उस फोन कॉल की बात मानी। ये सब किसी का बनाया हुआ जाल लग रहा है, जिसमें हम खुद से आकर फंस गए हैं। सुनैना को वहां पर बहुत ही अजीब सा लग रहा था और जब से वो दोनों अंदर आए, सुनैना कुछ ना कुछ बोल ही रही थी। तभी आदित्य ने उसे धीरे से चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उसके हाथ में पड़ा हुआ वो वॉकी पॉकी, उसमें एक रेड लाइट जल रही थी और शायद उस पर इनकमिंग कॉल आ रही थी, जिसे कि आदित्य को रिसीव करना था। आदित्य ने उस तरह की वॉकी टॉकी सिक्योरिटी रीजन के लिए एक या दो बार ही यूज की होगी, लेकिन उसे ज्यादा इस बारे में पता नहीं है। लेकिन उसमें एक बटन होता है जिससे उसने वो रिसीव कर लिया, और वो रिसीव करते ही उस वॉकी टॉकी से एक लड़की की आवाज आई। कुछ ज्यादा ही चालाकी कर रहे हो मिस्टर सिंघानिया, तुम दोनों को अलग अलग रूम में रखवा दूं क्या? उस लड़की ने दूसरी तरफ से फोन पर जैसे ही ये बात बोली, आदित्य ने तुरंत ही सुनैना के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने एकदम करीब कर लिया और तेज आवाज में लगभग चिल्लाते हुए बोला, नहीं, हमारी यही डील हुई थी कि तुम सुनैना को कुछ भी नहीं करोगी और वो मेरी आंखों के सामने रहेगी। अगर तुमने ये डील तोड़ी तो अभी मैं यहां से चला जाऊंगा। और तुम इतना क्यों छिप रही हो? अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करती हो तो सामने आओ ना, ये चूहा बिल्ली का खेल क्या लगा रखा है? दूसरी तरफ से अजीब तरह से हंसने की आवाज के साथ उस लड़की ने ये बोला, अरे अरे, थोड़ा तो पेशेंस रखो, इतने भी क्या इंपेशेंट हो रहे हो मेरे बिना? और वैसे भी तुमसे ज्यादा तो मुझे तड़प है तुमसे मिलने की। आखिर कब से चेस कर रही हूं मैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि हाथ नहीं आते, और अब हाथ आए हो तो इतनी आसानी से जाने थोड़ी ना दूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुनैना तुरंत ही गुस्से में दांत पीसती हुई बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ये सब कुछ बोलने की? वो पहले से ही शादीशुदा है, और क्यों कर रही हो तुम उसका पीछा? छोड़ दो उसे, भूल जाओ, जाओ किसी और का पीछा करो जो तुम्हें सच में मिल जाए। उस लड़की ने बहुत ही सिडक्टिव आवाज में बोला, नहीं आता कोई और पसंद, क्या करूं, जब से इन्हें देख लिया है ये नजरें किसी और पर ठहरती ही नहीं, और अगर किसी और को ढूंढना इतना ही आसान है तो जाओ तुम ढूंढ लो किसी को और छोड़ दो अपने पति को मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आदित्य की दूसरी वाइफ बनने में। इतना बोलकर उस लड़की की दूसरी तरफ से बहुत तेज हंसने की आवाज आई, और उसकी ऐसी हंसी सुनकर आदित्य को बहुत ही इरिटेशन हो रही थी। दूसरी तरफ सुनैना को एकदम गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था गुस्से में उस लड़की का सिर फोड़ दे। अगर वो उसके सामने होती तो सुनैना जरूर अब तक उसे थप्पड़ तो मार ही चुकी होती। सुनैना इस बार उसे गुस्से में सुनाते हुए बोली, एक नंबर की बेशरम लड़की हो तुम, इस तरह से क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? पता नहीं क्या लगा रखा है, इंसान हो या फिर कुछ और ही। इस बार वो भी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोली, ओ यू, प्लीज शट अप, और तुम्हें जो समझना है समझ लो, मैं यहां पर तुम्हें सफाई देने नहीं बैठी हूं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, और आदित्य, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आदित्य ने एकदम ही स्ट्रेट आवाज में कहा, सबसे पहले मेरी वाइफ से ठीक तरह से बात करो, नहीं तो मैं अभी ये कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा कोई भी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। कर लो फिर तुम्हें जो करना है, मैं भी देखता हूं। उस लड़की ने भी जैसे उन दोनों को और ज्यादा परेशान करते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वाइफ को रिस्पेक्ट देने के लिए तुम दोनों को यहां पर बुलवाया है? अब तक उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका आदित्य बोला, जल्दी बोलो क्या करना है, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास तुम पर वेस्ट करने के लिए, और हम दोनों को ही यहां से जाना है। तुमने हमारे मोबाइल फोन क्यों ले लिए हैं? आखिर कब तक रखने वाली हो तुम यहां पर? देखो, तुम अपनी किसी भी तरह के इरादों में कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूं, और अगर तुम पैसों के लिए ये सब कर रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि पैसे, प्रॉपर्टी और बाकी सब। उस लड़की ने एकदम ही लापरवाही से इस बात का जवाब दिया, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है सब कुछ तुम्हारी इस सो कॉल्ड बीवी के नाम है, जो कि एकदम बेवकूफी में आकर तुमने ही सब कुछ इसके नाम किया है। खैर, मुझे उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम किसी को भी दो या फिर आग लगाओ, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए आदित्य, अपनी लाइफ में और कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनते ही सुनैना का खून खौल गया और वो गुस्से में बीच में ही बोल पड़ी, और तुम्हारा ये सपना इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी पूरा नहीं होने वाला है, सो कीप ड्रीमिंग। आदित्य ने आखिरी बार उसे आराम से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे मिलकर तुम्हें इस बारे में समझाना चाहता हूँ कि तुम अपना ये पागलपन छोड़ दो। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, और शादी से पहले से भी मैं सिर्फ और सिर्फ सोना से प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे, और इस तरह से हमारे बीच में आकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय दर्द, तकलीफ और परेशानियों के।
इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। उन दोनों की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर वो लड़की इरिटेशन से बोली, मेरी भलाई के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं खुद ही अपना बुरा चाहती रहती हूँ। और ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे, तुम दोनों की प्रेम कहानी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं अभी तुम दोनों के डाइवोर्स पेपर वहां पर भिजवा रही हूँ। चुपचाप से साइन कर लेना, नहीं तो फिर तुम्हारी बीवी तो जिंदा नहीं बचेगी, और उसके मरने के बाद तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। आदित्य इस बार उसे सीधा ही धमकी देते हुए बोला, हाथ लगाकर दिखाओ, उससे पहले मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, और जिंदा तो तुम नहीं बचोगे अगर तुमने ऐसा ख्याल भी अपने दिमाग में लाया। सोना कोई खरोच भी आई ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कभी तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और तुम्हारा ये सो कॉल जो होटल या जो कुछ भी है ना, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, जिससे तुम्हारे बचकर भागने की कोई जगह ना बचे। उस लड़की ने नौटंकी करते हुए कहा, वो मैं तो डर गई, क्या धमकी देते हो कसम से, एकदम किसी माफिया गैंगस्टर की तरह, या फिर उससे भी ज्यादा अच्छी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर अपनी जान जाने का बिल्कुल भी डर है? 1% भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए ना जान ले भी सकती हूँ और अपनी जान दे भी सकती हूँ, इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है ना, इसलिए तुम अभी तक इस लड़की पर अटके हुए हो। एक बार मुझे चांस दो, तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे, आदि प्लीज। आदित्य ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, बंद करो अपनी बकवास, तुम जो बोल रही हो ये सब कुछ पागलपन है, सिर्फ एक अट्रैक्शन ऑब्सेशन है, प्यार ऐसा नहीं होता है जिसमें तुम दो लोगों को अलग करके जबरदस्ती उनमें से किसी एक को अपना बनाने के बारे में सोचो, इसलिए ये सब जो कुछ भी कर रही हो उसे यही रोक दो, तो हम भी तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे।
सुनैना फिर से उस वॉकी टॉकी के एकदम नजदीक आकर चिल्लाते हुए बोली, हाँ दूसरे के हस्बैंड पर नजर डालना भी इल्लीगल होता है, आई होप तुम्हें पता होगा। और आदित्य बस करो, तुम इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? इतना बोलकर सुनैना ने आदित्य के हाथ से वो वॉकी टॉकी लेकर उसे जमीन पर पटकते हुए तोड़ दिया, और उसके ऐसा करने की आदित्य को उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और उसने कहा, सोने ये क्या किया तुमने? हम इस वक्त उसी के होटल में हैं और हम उसे गुस्सा नहीं दिला सकते, यहाँ पर सारे लोग उससे मिले हुए हैं, हमारे बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर आदित्य को इस तरह से परेशान होता देख सुनैना उसे एकदम आराम से समझाते हुए बोली, रिलैक्स दादी, मैंने जानबूझकर ये किया है, मुझे पता है ऐसा करने से उसके ईगो पर चोट पहुँचेगी, क्योंकि वो अब तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, वो तिलमिलाते हुए यहाँ पर आएगी या फिर कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, और हमें बस उसी का इंतजार करना है, सुनैना ने आदित्य को समझाते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर आदित्य ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल के सिस्टम रूम में बैठी हुई वो लड़की एकदम ही तिलमिला गई जैसे ही सुनैना ने उसके हाथ से लेकर वो वॉकी टॉकी तोड़ दी, और अब वो वहां पर बैठे हुए कमरे में सिर्फ उन दोनों को देख पा रही है, क्योंकि उस रूम में उसने कोई भी वॉइस रिकॉर्डेड माइक फिट नहीं करवाया, जिस वजह से वो दोनों की बातें नहीं सुन पा रही है, और इसीलिए उसने वो वॉकी टॉकी भिजवाया था कि कम्युनिकेशन के लिए। और उन दोनों को ऐसे बात करता देख अब उसके पूरे तन बदन में आग लग गई। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, प्लान बी, मैंने जैसा भी रेडी किया था सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, और मेरे साथ आओ तुम सब। इसके अलावा वो जो उन दोनों के साइड वाले रूम में है उसे भी इन्फॉर्म कर दो, इसकी बीवी को तो मैं सबक सिखाती हूँ, कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है ये लड़की, इसे पता नहीं है आदित्य सिर्फ मेरा प्यार नहीं, पागलपन, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ है, और उसे तो मैं हासिल करके रहूंगी। नहीं नताशा, एक बार फिर से सोच लो, ये सब कुछ तुम जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसके पीछे खड़े एक लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो उस लड़की ने पीछे मुड़कर घूमते हुए उसकी तरफ देखा और झटका उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर कहा, शट अप जाय, तुम खुद इतना डरते रहते हो और एक नंबर के डरपोक इंसान हो, मुझे भी अपनी तरह ही समझते हो क्या? मैं किसी से भी नहीं डरती, और भले ही पहले मैं आदित्य को छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाने वाली उसके बिना, वो मेरी लाइफ में आकर रहेगा। उसकी बात सुनकर पीछे खड़े उस लड़के ने, जो कि उसका शायद असिस्टेंट या मैनेजर जो भी था उसके लिए काम करता था, उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वो इन सब चीजों में उसका साथ दे रहा है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसे पता है नताशा जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए उसने उसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा, लेकिन नताशा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहां सिस्टम रूम से बाहर निकल गई क्रमशः।